ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि में। ब्रह्मा बाबा और सभी ब्रह्मा वत्स मिल करके ओम ध्वनि किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ये ओम शांति का महामंत्री है जो हम आत्माओं को खुशी के झूले में झुलाता रहता है, क्योंकि जब आत्मा शांति स्वरूप की अनुभूति में स्थित होती है तो बाकी सब दैवी गुण और शक्तियां भी स्वतः ही प्राप्त होती रहती हैं। खुशी, आनंद, प्रेम, शक्ति सभी इसके साथ साथ प्राप्त होती हैं, जैसा आज बाबा ने बताया भी है और जैसा विषय भी मुझे बताया गया है। बैलेंस से ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, दुआएं कैसे मिलती हैं वो विषय बताया गया है। तो बचपन से ही हम सभी को बैलेंस की अनुभूति है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था, जैसे झूले पर जब झूलते हैं ना, तो झूले में भी दो रस्सियां है और दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दो बातें कौन सी बताई थी बाबा ने? हाँ, याद और सेवा। ये दोनों का अगर बैलेंस रहता है तो जीवन में खुशी भी रहती है और खुशी के झूले पर झूलते रहते हैं। और जब एक रस्सी इम्बैलेंस हो जाती है, पूरा झूला ही इम्बैलेंस हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि झूले से नीचे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए यदि हम सदैव खुशी के झूले में झूलते रहें, जीवन में सदैव सफलता होती रहे, तो उसके लिए बैलेंस बहुत आवश्यक है। कोई भी बैलेंस होता है वो जीवन में सदा खुशी और आनंद की प्राप्ति कराता है। आप सब भी माताएं भी इतनी बैठे हो, भाई भी, तो बैलेंस जो होता है, बच्चा भी जब छोटा पैदा होता है, जब बहुत छोटा होता है तब तो बस माँ की छाती से ही लगा रहता है, वहीं से ही उसे सब दूध आदि प्राप्त होता है। थोड़ा बड़ा होता है बस थोड़ा घिसटना शुरू करता है, पेट के बल भी चलता है, और थोड़ा बड़ा होता है दो हाथ दो पैर से चलता है, थोड़ा और बड़ा होता है खड़ा होता है, वहां से जैसे उसका बैलेंस का पार्ट शुरू हो जाता है, कुछ महीने में ही कुछ दिनों में ही बैलेंस, और थोड़ा और कुछ दिन में ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, दूसरा बढ़ाता है और बैलेंस से बच्चा चलता है। अब इसके बाद की बात ध्यान देने योग्य है। बस जैसे ही वो बैलेंस रखकर चलता है, माता पिता और संबंधी बड़ा खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और बच्चे को थोड़ा आगे बढ़ता देख करके खुश होते हैं, बढ़ाते हैं उसकी हिम्मत, ये भी ठीक है। लेकिन उसके बाद कभी कभी क्या, जब पूरा एकदम बैलेंस नहीं रख पाता बच्चा तो तेजी से चलता है, कई बार गिर भी पड़ता है, देखा होगा। फिर माँ बाप और दूसरे हिम्मत देते हैं, खड़ा करते हैं, फिर वो चलना शुरू करता है और चलते चलते कई बार जरा थोड़ा तेजी से गिर जाता है तो रोने भी लगता है। फिर माताएं क्या करती हैं, माताओं को खास अनुभव होगा ना, बच्चा जैसे ही रोने लगता है उसे चुप कराने और हिम्मत देने के लिए क्या करते हैं, अक्सर देखा होगा माताएं जो है ना बच्चे को थोड़ा उठा के और फिर धरती को मारते हैं, ऐसे है। जैसे भाई धरती ने उसे चोट लगाई है जिससे उसे थोड़ी तकलीफ हुई बच्चे को, और धरती को ऐसा मारते हैं, बच्चा भी बड़े गौर से देखता है और चुप हो जाता है। लेकिन यहीं से ही हमने उसके दिमाग में एक बीज बचपन से ही बोना शुरू कर दिया। कौन सा? कि अगर कोई भी टकराव होता है, तुम्हें दुख होता है, तो तुम जिम्मेवार नहीं हो, दूसरा जिम्मेवार है। जैसे इसमें गिरा तो बच्चा, लेकिन धरती को मारा और धरती को जैसे देख करके बच्चा भी खुश हो जाता है, शांत हो जाता है कि भाई मेरा दोष नहीं है। लेकिन बचपन से ही उसके माइंड में ये बीज पड़ गया कि भाई कोई भी टकराव होता है तो दूसरा ही गलती पर है, मैं हमेशा सदा ठीक हूँ। ऐसी बात होती है ना, कभी भी आपका भी टकराव होता है, ऐसी बात होती है। हाँ, सब अपनी बात देख के खुश हो रहे हैं कि हाँ बात तो सही है। हम लोग अक्सर करके ऐसा करते हैं और दूसरे को ही हम गलत समझते हैं। तो यहाँ से हमारा बच्चे से बैलेंस का पार्ट शुरू होता है चलने का, और बैलेंस से ही हम देते तो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद, बहुत अच्छा, खुश, शाबाश, चलो आगे और बढ़ो। लेकिन वो ब्लेसिंग के साथ साथ उसके मन में ये बीज भी पैदा हो जाता है और फिर यहाँ से ही उसका पार्ट शुरू हो जाता है। जितना, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है, समझता है, भले ऑर्गन्स उसके छोटे हैं, बता नहीं सकता, लेकिन अनुभव तो करता है ना, खुश होता है, रोता है और अनुभव करता रहता है, और खुशी का भी। इसीलिए छोटे बच्चे को देखेंगे, पालने में भी पड़ा होगा, बस कभी मुस्कुराता है, खुश होता है और बहुत, कभी पुराने संस्कार, पुरानी बातें पिछले जन्म की उसको याद तो रहती हैं, आती हैं समय प्रति समय, लेकिन उसके साथ साथ उसका खुश होना, दुखी या सुखी होना, उस पर उसके भाव से, चेहरे से प्रकट भी होता है। फिर और जीवन में आगे बढ़ता है तो जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बच्चा जैसे झूले का बताया ना, ऐसे ही आप सब भी ज्ञान मार्ग में जब से नया जन्म हुआ है, शरीर वही है, पुराना बड़ा, लेकिन ज्ञान मार्ग में जब से नया जन्म होता है, नई बातें हम सुनते हैं, स्मृतियां नई होती हैं हमारी, बाबा सबसे पहले स्मृति बदलता है और भाई तुम शरीर नहीं आत्मा, तुम्हारा घर ये नहीं बल्कि आत्मा का घर परम धाम है, ये तुम्हारा पार्ट है परिवार में, पति पत्नी बच्चे माता पिता आदि का, ये सब तुम खेल खेल रहे हो, पार्ट प्ले कर रहे हो। तो जितनी जितनी ये स्मृति शुरू में तो थ्योरेटिकल सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवहार में जब आने लगती है तो ज्ञान मार्ग का जीवन हमारा जैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहला बैलेंस जो हमें ज्ञान मार्ग में चाहिए वो है प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस। ये बैलेंस सबसे पहले जरूरी है। आप सबको भी याद होगा, जब से ज्ञान में आए बस ज्ञान सुना बहुत खुशी बढ़ जाती है और वो जीवन हमारा जैसे एकदम हमें एक नया स्फूर्ति नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस ये जीवन में ज्ञान मार्ग से हमारा शुरू हो जाता है और अंत तक चलता रहता है। प्रवृत्ति निवृत्ति का बैलेंस ये अंत तक हरेक का, हमने ब्रह्मा बाबा में भी देखा, जैसे बहन जी ने बताया हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला है 6-7 साल। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये मिला है कि अंतिम दिन 17-18 जनवरी को हम यहाँ मधुबन में ही थे जब ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त किया और जब अपना देह त्याग किया तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपनी आंखों से हमने उस दृश्य को बाबा को कर्मातीत होते हुए देखा और उसके साथ आज हम सब लोग आपस में उसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत तो बनना ही है, अव्यक्त फरिश्ता बनना ही है। तो बाबा ने जो बन करके दिखाया वो साकार रूप में, क्योंकि बाबा भी प्रवृत्ति वाले थे, पूरा पहले लौकिक प्रवृत्ति थी बाबा के, इतने 5 बच्चे लड़कियां, 3 लड़की 2 लड़के और पोते, धंधा सोने चांदी का, सारा समाज के अंदर व्यवहार सब में बहुत बाबा की निपुणता थी, कुशलता थी। और इस कारण से जैसे प्रवृत्ति का बैलेंस है, धंधे का और परिवार का बैलेंस बाबा रखते थे, लेकिन जब से ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा बाबा ने प्रवेश किया 60 वर्ष की आयु में बाबा का साक्षात्कार हुआ, जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। वो तो हम सबने जीवन कहानी में पढ़ा भी है, देखा भी है। उसके बाद अंतिम दिन तक जो हमने देखा 17-18 जनवरी को भी बाबा पूरा बैलेंस प्रवृत्ति, ज्ञान मार्ग की पूरी प्रवृत्ति, ज्ञान मार्ग का भी परिवार कितना बड़ा, उसको हेड करना, इतना ज्ञान मार्ग की सेवाएं चारों तरफ, इतने बाबा के बच्चे, और साथ साथ मन में जैसे निवृत्ति का भी भाव, बस मैं आत्मा हूँ और ये शरीर के द्वारा पार्ट प्ले कर रही हूँ। अंतिम दिन भी जितना प्रेम से बाबा मिलते थे, जब बाबा से हम लोग मिलते थे बाबा हाथ फैला देते, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, बस बाबा की आंख में ऐसी चमक होती थी, इतनी दिव्यता होती थी, इतना ऐसे प्रकाशमय स्वरूप बाबा का होता था कि वो प्रकाशमय स्वरूप को देखते ही बस बाबा की बाह में आते थे और विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अशरीरीपन की इतनी प्रैक्टिस की हुई थी। आप सबने भी पढ़ा है डायरियों में, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है, चाहे पत्नी हो बच्चे हो, सब लिख के ही पक्का बाबा ने नहीं किया था, बल्कि जिसको भी देखते थे बाबा दृष्टि देते थे, वो दृष्टि लेते लेते ही एकदम ध्यान में तो नहीं जाना, जैसे हम समझते हैं साक्षात्कार, वो नहीं, लेकिन विदेही अशरीरी स्थिति को वो प्राप्त कर लेते थे। हम सब अनेक बार ये अनुभव किया है, इतना बाबा के अंदर ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का भी बैलेंस, ये प्रवृत्ति का प्रतीक, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, इतना स्नेह से बाबा बुलाते थे और आते ही एकदम निवृत्ति, एकदम डिटैच, मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, उसका अनुभव करना ये साधारण बात नहीं है, करवाना बाबा सबको वो अनुभव कराता था। तो ऐसे अनुभव कई बार करते थे वहाँ, और इस कारण से जीवन में अंतिम दिन तक भी बाबा ने बच्चों को अनुभव कराए, बच्चों को ये मिलवाया, वो भी आपको आगे बताएंगे अंतिम दिवस का भी और अनुभव। लेकिन बैलेंस से तो जीवन में एक तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का, दोनों का बैलेंस। एक व्यक्ति था, मुझे याद आ रही है एक छोटी सी कहानी, व्यक्ति था अपना, बहुत एक बार अपने गुरु के पास गया, देखा गुरु के साथ सामने पंच चेले और भी बैठे हैं, वो भी बैठ गया। उस दिन थोड़ा अशांति का अनुभव कर रहा था, लेकिन गुरु का प्रवचन सुनते सुनते उसे अच्छा लगने लगा। इतनी देर में एकदम भूचाल आया, धरती हिली, अर्थक्वेक आया, सब एकदम चेले जो बैठे हुए थे एकदम भागे बाहर, वो भी हिलने लगा पूरा, जहाँ गुरु के वो छपरे के नीचे सब बैठे हुए थे वो सब भागे और बोला, गुरुजी बाहर भागो भागो, भूचाल आया, अर्थक्वेक आया, ये कभी भी गिर सकता है, हिल रहा है बड़ी तेजी से। लेकिन गुरुजी शांति से बैठे रहे। बहुत थोड़ी देर तक वो हिलता रहा, सब लोग बाहर से हल्ला भी करते रहे, लेकिन गुरुजी वहीं शांति से बैठे रहे। थोड़ी देर बाद भूचाल तो शांत हो गया। जब भूचाल शांत हो गया, सब आए और आके फिर वहाँ बैठ गए और गुरुजी कहा, अरे गुरुजी आप भागे नहीं, इतनी तेजी से ये हिल रहा था, कभी भी ये गिर सकता था, चोट लगती थी आपको। तो गुरुजी ने देखा, कहा तुम भागे, मैं भी तो भागा था। कहाँ भागे गुरुजी, आप तो वहीं की वहीं बैठे हुए थे। कि नहीं, तुमने देखा नहीं, फर्क इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ, और अंदर भागा, और जहां बाहर तो बहुत हलचल थी, कहीं भी भागते हलचल ही होती, लेकिन अंदर मैं ऐसे स्थान पर भागा जो अति अचल था, यानी मन मेरा अचल। तो अति हलचल में भी अति अचल, ये बैलेंस, एक दूसरा बैलेंस जो जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो भिन्न भिन्न आएंगी, मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, जय पराजय, अलग परिस्थितियां आएंगी, बहुत हलचल होगी जीवन में, कभी संबंध दो की तरफ से, कभी धन की तरफ से, कभी परिवार की तरफ से, कभी व्यवसाय की तरफ से, हलचल आएंगी, ऊपर नीचे होगा, लेकिन वो स्थिति हमारी ऐसी हो जैसे अति अचल जैसी। बाबा का हमने देखा क्या होता था, इतना आयु 93 इयर्स ब्रह्मा बाबा की आयु, अंतिम दिन तक भी बाबा ने इतना कार्य किया, और ऐसी स्थिति अलचल में, इतनी आयु और माउंट आबू में सर्दी का मौसम भी बहुत सर्दी होती है, तो कई बार बाबा को खांसी आती थी, मुरली चलाते चलाते भी एकदम खांसी आती थी, बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी एकदम। हम लोगों को लगता था शायद बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, आंखें भी जैसे गीली हो गई, लेकिन बस मुरली चलाते चलाते खांसते हुए भी बाबा के, देखो बच्चे अभी तो ये शरीर भी पुराना है, पांच पुराने तत्वों का, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है, आत्मा भी पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान हो गई है, तो ये दोनों ही आत्मा और शरीर दोनों ही तमोगुणी हो गए हैं, इसने शरीर में खांसी आती है, रुकावट, कफ आता है और बाबा को वो तकलीफ होती थी, लेकिन परिस्थिति तो अब खांसी रूपी परिस्थिति तो आई, लेकिन बाबा उसका निवारण कैसे करता था? बस बाबा के संदली के पास ही श्री कृष्ण का छोटेपन का चित्र, हाँ, लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र वो रखे रहते थे। और बाबा कहता, देखो बच्चे, अभी तो ये शरीर और आत्मा तमो प्रधान है, तकलीफ देता है शरीर, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, विष्णु बनेगा, नई दुनिया होगी, सतो प्रधान तत्वों से बना हुआ नया शरीर होगा, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, कितनी खुशी की दुनिया होगी। बस बच्चों को तो खुशी में नाचना चाहिए और खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। ऐसा बाबा कहां, दो मिनट पहले खांसी आ रही होती थी, तकलीफ दिखती थी, लेकिन दो मिनट में ही बाबा अपनी स्थिति के द्वारा खांसी रूपी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेते थे। ऐसा हमें भी अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है, ये बैलेंस ऐसा रखना है कि कोई भी परिस्थिति आए, हाँ, उसे हमें उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि अपनी स्वस्थिति हम इतनी मजबूत बना लें, जैसे बाबा खांसी रूपी परिस्थिति से भी नई दुनिया की बातें निकाल के खुशी में एकदम आ जाता था, ऐसे ही खुश हो जाए, वो परिस्थिति दब जाए और हम स्वस्थिति से विजय प्राप्त कर लें। तो ये बाबा ने हमें सिखाया बैलेंस रखना। और क्या था, हाँ, अक्सर, हाँ, होता क्या है, जैसे मैं बच्चे की बात बता रहा था ना, बच्चे को हमने बचपन से सिखाया और हमारा भी जीवन पर्यंत यही चलता रहता है, देखो उसने ये किया इसने मुझे क्रोध आया, उसे ये बात कही तो इसीलिए मैं अब सहन नहीं कर सका।
युग में अब तुम्हें आना।
लोग जीवन में बैलेंस की बात कर रहे थे, प्रकृति ने भी जो हमें ये शरीर दिया है ना, ये शरीर और आत्मा, तो इसमें भी बैलेंस के लिए देखो दो टांगे दी हुई हैं। दो टांगे होती हैं तो बैलेंस होता है, आदमी तेजी से चल सकता है, दौड़ सकता है। और साथ में माइंड जो है वो उसमें भी बैलेंस की शक्ति दी है। तो ब्रेन होता है, मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है उसमें भी दो भाग होते हैं, और एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन, बायां हिस्सा और दायां हिस्सा। तो बायां हिस्सा जो होता है वो जीवन के व्यवहारिक कर्म करता है, जो है जितना भी ऑफिस जाना, घर में बिजनेस करना, जो भी व्यवहार से संबंधित जितनी बातें हैं कर्म, वो लेफ्ट ब्रेन डील करता है। जबकि राइट ब्रेन दायां हिस्सा जो है वो जीवन के मूल्य और गुणों उसको बताता है, उसके आधार पर हम कर्म करते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट एंड राइट ब्रेन ये बैलेंस होना चाहिए साथ में। जो भी काम करें व्यवहार में भी ठीक रहे, कार्य का भी ज्ञान हो, और जो कार्य के साथ साथ जीवन के मूल्यों का भी ज्ञान हो, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति, जो जीवन की बातें हैं, मूल्य आपको सिखाए हैं, आत्मा परमात्मा की बात है, शुरू से ही आप सब तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, तो इसलिए वो दोनों का जब मूल्य रहेगा, बराबर बैलेंस रहेगा, तो जीवन में ब्लेसिंग्स आशीर्वाद मिलती रहे। अक्सर होता क्या है, मैंने बताया ना, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल करते रहे? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना देखते हैं ना, हम समझते हैं शायद आईने पर धूल चढ़ी है, मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, अपने को ठीक समझते हैं, उसी को साफ करते रहते हैं, यानी दूसरे के ब्लेम लगाते रहते हैं, दूसरा सुधरे ये हो, लेकिन अपने को नहीं देखते, धूल चेहरे पर ही, अर्थात हमारे अंदर ही दोष होता है, हमारे अंदर ही कमजोरियां होती हैं। मन हमारा ही तो हिस्सा है आत्मा का। इसीलिए एक व्यक्ति एक राजा के दरबार में आया और कुछ भिक्षा पात्र लेके आया छोटा सा, और कहा कि राजन मुझे भिक्षा दे दो इसमें। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बुलाया, कहा इसमें भिक्षा लाके डाल दो, राजकोष में से जाकर सोना चांदी हीरा मोती जो कुछ है सब इसके पात्र में डाल दो। मंत्री गया, भर के ले आया मुट्ठी, डाल दिया, वो भरा नहीं, दोबारा गया फिर लाके डाल दिया, तीसरी बार गया, ऐसे 8-10 बार गया लाके डाला, लेकिन देखने में पात्र छोटा सा था लेकिन भरता नहीं था। बड़ा आश्चर्य हो रहा था सबको। तो राजा ने कहा महाराज इसमें जरूर कोई रहस्य है, इतना छोटा होते भी ये नहीं भर रहा है, क्या बात है? तो उसने कहा हाँ महाराज, राजन इसका रहस्य ये है कि ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और ये खोपड़ी में यहाँ मन होता है, तो इसीलिए मन कभी भी तृप्त नहीं होता, जितनी भी इसकी इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी करो दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो पूरी करो चार का जन्म हो जाएगा। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति वो बहुत आवश्यक कि इतना इच्छाएं भी ना हो, ऐसा जीवन होना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या, धीरे धीरे इच्छाओं की भी अविद्या होती रहे। इच्छा क्या चीज है, ये हमने बाबा को देखा। मैं बता रहा था अंतिम दिन जब बाबा से मिले ना, तो पहले बाबा से कई बार मिले थे, ब्रह्मा बाबा से हमेशा बाबा पूछता था, हाँ बच्चे कैसे हो, क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ है, अब आगे और क्या करने का प्लान है, आदि आदि हम लोग बताया करते थे। ऐसा ही सोच के हम 17 जनवरी को भी बाबा के सामने गए, 1969 की बात, जिस टाइम बाबा अव्यक्त हुए, 17 और 18 जनवरी को हम कम से कम 6 बार बाबा से मिले। उस वक्त जब भी सुबह, क्योंकि और ज्यादा पार्टियां थी नहीं, बहुत बाबा से मिलने का मौका मिलता था, बाबा से मिलते थे, बस बाबा के सम्मुख गए और बाबा ने दृष्टि दी, और दृष्टि दे के बाबा कहता था, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें प्रश्न बताने की भी जरूरत नहीं होती थी, हम किस लिए आए हैं, क्या पूछने आए हैं, बाबा बस गुड्डी से दृष्टि से एकदम मन की बात परख लेता था और उसका समाधान कर देता था। ये है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, जो मैं आपको बता रहा था कि अपने मन के अंदर ऐसा हो कि इच्छाओं पर भी हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो जाए, तब हम दूसरे के मन की बात को पढ़ सकेंगे और उसका समाधान कर सकेंगे। अंत समय ये ही होने वाला है, जैसे हमने बाबा को देखा, 5-6 बार मिले 17-18 जनवरी को, हर बार ऐसा होता था, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस मन में होता था ये सेवा की बात पूछेंगे, ये पुरुषार्थ की बात पूछेंगे, गए बाबा ने देखा, दृष्टि दी, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो हम भी अंत समय में, बहुत दुनिया के लोग हमारे सम्मुख आएंगे अपनी अनेकों इच्छाओं को लेकर, बस हमारी भी अंत समय तक हमें ऐसी स्थिति बनानी है जो हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प न हो, कोई इच्छाएं न हो, तो हम दूसरे की इच्छाओं को पढ़ सकेंगे और उनका समाधान कर सकेंगे, और तभी प्रत्यक्षता होगी, तभी लोग कहें अरे इनमें भी, इन्होंने तो मेरी मन की बात पढ़ ली, ये भी भगवान, ये भी भगवान, सभी वीकेश के पास जाएंगे और तभी सिद्धांत निकलेगा भक्ति मार्ग का, भगवान सर्वव्यापी है। तो ये इच्छा मात्रम अविद्या हमें बनना है सबको, लेकिन कैसे बनेंगे, बाबा ने बताया था एक बार अभी कुछ दिन पहले कि बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो देता हूँ, कौन सा, कि बच्चों में विकारी संकल्प ने, पुराने अनुभवी भाइयों की भट्टी हो रही थी और सभी 30-40 साल पुराने थे, उनकी भट्टी, तो बाबा ने कहा, संदेश दिया कि इन बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं है, लेकिन अभी तक भी व्यर्थ संकल्प बच्चों में आ जाते हैं, तो अब बच्चों को व्यर्थ संकल्प से भी छुट्टी लेनी है, उनको ये ही समझना है कि अब मुझे व्यर्थ कोई ना आए, और व्यर्थ के लिए एक मूर्तिकार था, मूर्ति बहुत अच्छी बनाता था, सब लोग बोलते थे अरे आप तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाते हो, कैसे बनाते हो इतनी बढ़िया मूर्ति, तो वो कहता था मैं मूर्ति तो बनाता नहीं, मैं क्या करता हूँ, पत्थर लिया और उसके चारों तरफ जो भी व्यर्थ है ना, उसको व्यर्थ को मैं निकाल देता हूँ, तो मूर्ति अपने आप ही अंदर से प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बस बाबा भी हम बच्चों को ये कह रहा है, अब तुम बच्चे भी जो भी व्यर्थ की बातें हैं, सोचना, बोलना, करना, व्यवहार है, व्यर्थ की बातों को निकालो, तो अपने अंदर से हरेक की संपूर्णता की मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी और हम सब बाबा के साथ बस सूक्ष्म वतन जाके परम धाम जाना है और फिर उसके बाद नई दुनिया में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमें कर्म योग की बनानी है। वो कैसे बनेगी? जब बायां हिस्सा ब्रेन से हम कर्म अलर्ट रह के, जागरूक रह के कर्म करेंगे, और दूसरा हिस्सा हमें रिलैक्स, कर्म योगी की स्थिति होगी। कर्म भी करें लेकिन साथ साथ योग भी चलता रहे, और ये कर्म योगी की स्थिति ही हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगी। और अगला बैलेंस और है, आजकल के जमाने में टाइम तो लोगों पे कम है, समय कम है, तो इसीलिए सब कहते हैं अरे भाई आई एम बिजी, बहुत बिजी है, समय का अभाव है, समय नहीं है। लेकिन कर्म तो करने हैं, जब तक व्यवहार में है, परिवार में है, समाज में है, कर्म तो करेंगे। तो एक बैलेंस और चाहिए, कौन सा? बिजी और इजी का। बिजी रहें, जो भी है कर्म हमें दिया हुआ है, कर्म करना है, लेकिन बिजी के साथ साथ हम बिल्कुल इजी रहें, हल्का रहें। और जितना हल्के रहकर कर्म करेंगे, बिजी और इजी रह करके, उतना कर्मों में परफेक्शन आएगी, और परफेक्शन से जीवन में सफलता मिलेगी, और सफलता मिलेगी तो क्या होगा, सबकी दुआएं भी मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस रखने से जीवन के अंदर दुआएं, ब्लेसिंग्स सदा मिलती रहेंगी, और हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और हमें जीवन में आवश्यक क्या है? केयरफुल, सावधान भी रहना है। ऐसा नहीं एकदम बाबा की याद में कहने को मस्त हो जाए या कुछ ख्याल न रहे, केयरफुल भी रहना है और चीयरफुल भी रहना है। केयरफुल और चीयरफुल का बैलेंस, केयरफुल माने सावधान, जागरूक होके कर्म करना, और चीयरफुल माने खुशी से, आनंद के साथ, जो बाबा ने कहा चेहरे से खुशी टपके, नैनों से खुशी टपके, हमारे बोल से खुशी टपके, हमारे व्यवहार से भी खुशी और आनंद की बात हो, तभी तो खुशी के झूले में झूलते रहेंगे, और जब तभी तो हमें सब कहेंगे वाह कितने खुश नसीब हैं, इन्हें क्या मिला है, तब दुनिया कहेगी। हाँ, मुझे इस रेफरेंस में एक बात याद आती है, कई बार विदेशों में जो कॉन्टिनेंट में जाने का सौभाग्य मिला सेवा के लिए, तो जब हम एक बार रशिया में थे, और रशिया में अंदर वहां पर एक, उन दिनों जिन दिनों हमें बुलाया गया था रशिया में, एनवायरमेंट ईयर उनका चल रहा था, यानी पर्यावरण, जो आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बात होती है ना, तो वहां पर एक किरलियन इंस्टीट्यूट है, और किरलियन नाम के वैज्ञानिक ने, सेंट पीटर्सबर्ग शहर का नाम है, वहां गए थे, तो बहन जी ने उस व्यक्ति को बुलाया था, किरलियन इंस्टीट्यूट का जो बड़ा था, कि आप आइए हमारे यहां से भी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के मुख्य आ रहे हैं, उनके साथ आप डिस्कस करिए। तो वो आया था अपने सब इंस्ट्रूमेंट लेके, तो नॉर्मल कैमरा में तो जब फोटो निकालते हैं व्यक्ति का चेहरा आता है, लेकिन उस किरलियन कैमरे से जब फोटोग्राफ निकालते हैं तो उसके साथ साथ मनुष्य का ऑरा, लाइट का ऑरा, जैसे देवी देवताओं के पीछे देखते हैं ना आप, देखो श्री कृष्ण जी है, श्री राम है, हनुमान है, और गणेश जी है, कोई भी धर्म पिता गौतम बुद्ध है, जैसे गुरु नानक देव जी है, हरेक के पीछे यहाँ लाइट का आपको बड़ा अच्छा गोल्डन सा ऑरा दिखाई देगा, वो लाइट का ताज जिसे बाबा कहते हैं ना, पवित्रता। जितनी मन के अंदर पवित्रता की डिग्री होगी उतना ये ऑरा चमकदार होगा। तो वहां पर उसके पास गए और उसने बहुत काफी इस रेफरेंस में बात की, हम लोगों का भी साइंटिस्ट विंग का इस क्षेत्र का काफी अनुभव है, तो वहां उनसे बात हुई, तो उसने केवल यही ऑरा नहीं बल्कि हर अंग का ऑरा होता है, उंगली का भी होता है, अंगूठे का भी होता है, आंख नाक कान हरेक का लाइट का जैसे ताज होता है हरेक का। तो उसने काफी देर तक ये सब अलग अलग निकाला और उसके बाद शाम को तक वो रहा और उसने एक बात बताई बहुत अच्छी कि मेरे पास दुनिया भर से लोग आते हैं सब तरफ से और हरेक अलग अलग धर्म संप्रदाय मठ पंथ के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, सब आते हैं। भारत के भी अनेक अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के लोग आते हैं और जब मैं उनका फोटो लेता हूँ सबके फोटो तो मेरे पास अलग अलग व्यक्तियों के बहुत सारे दुनिया भर के लोगों के ऑरा है लाइट का ताज। लेकिन मुझे ये बताते हुए भैया बड़ा खुशी होती है, उसने कहा कि मैंने सबके ऑरा निकाले हैं अलग अलग धर्म संप्रदाय आर्य समाजियों के, गुरु नानक देव जी वालों के और स्वामी नारायण के आदि आदि बहुत बहुत धर्म संप्रदायों के निकाले हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले भी आते हैं इनके भी निकाले हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का आता है उतना किसी और का नहीं आता। तो बाबा ने भी कहा था जब ये विज्ञान वाले मानेंगे और सिद्ध करेंगे, अभी तो सब कह देते हैं हाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था भी एक है, लेकिन तब वो कहेंगे कि ये ही है ब्रह्मा कुमारी संस्था, जहाँ जो बातें बताई जाती हैं उसे सब आत्मसात करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं और जैसा जिसके मन में संकल्प होता है वैसा ही उसका ऑरा होता है, वैसी लाइट होती है। तो ये बाबा ने जो बताया है अब वो विज्ञान भी धीरे धीरे उन्हीं बातों को सिद्ध करता जा रहा है, आता जा रहा है और वो समय नहीं कि जब विज्ञान की बातों को सारी दुनिया भी मानेगी और हम सब लोग भी आगे बढ़ते चलेंगे और हमारे चेहरे के द्वारा चाल चलन चेहरा नयन चैन सबके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ये समय आ रहा है। और इसीलिए किसी ने कहा है हाँ बाबा बताता है ना हमें फरिश्ता बना रहा है कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी। शहंशाह क्यों कहा है कि राजा होता है ना उसका शहंशाह, उसका कंट्रोल होता है सबके ऊपर, तो इसीलिए किसी ने कहा तू एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी खुद भगवान बन के जी। हम स्वयं बाबा अब हम बच्चों को भाग्यवान बना रहा है और हमारा भाग्य देख के सब दुनिया भी कहेगी अंत में, हर एक के चेहरे से रिफ्लेक्शन होगा देखो यही भगवान भगवती है, यही वो भाग्यवान आत्माएं हैं। और वो समय अब धीरे धीरे आ रहा है, बस ये पर्दा हटना बाकी है हमारी संपूर्णता का पर्दा। धीरे धीरे हम भी बाबा की तरह संपूर्ण होते जाएंगे और इसीलिए बाबा कहता है एक ऐसा भी होना चाहिए हाँ जितना जीवन में डिटैच्ड रहे, डिटैच्ड और इन्वॉल्वमेंट का बैलेंस। हम डिटैच कार्य करें लेकिन जो बाबा ने कहा ना बाबा करण करावन हार बाबा है, तो कराने वाला वो है मैं आत्मा कर रही हूँ, जो बाबा ने कहा मैं कर रही हूँ कराने वाला वो है, ये मेरा हाथ मेरे नैन मेरा मुख, एक एक हमें ये अनुभव हो कि बस ये अलग है मैं इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। और इसीलिए गीता में कहा है वो क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका ये अर्थ नहीं जो जनरल दुनिया लगा लेती है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा नहीं करो। ये बहुत साधारण अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कर्म करो, जिस वक्त कर्म करो पूरा इन्वॉल्व होके करो, दिल दिमाग अपने सब ताकत लगा दो कर्म के अंदर, जिससे कि सफलता मिले। कर्म करो विद फुल इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब फल की इच्छा हो, जब फल आए तो इमोशनली डिटैच हो जाओ, भावनात्मक रूप से डिटैच हो जाएंगे जितना, तो कर्म का कोई भी रिजल्ट हो, हमने कुछ और सोचा था लेकिन वैसा हमारी इच्छा के अनुरूप रिजल्ट नहीं भी निकला, तो हमें एकदम दुख अफसोस अशांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली भावनात्मक रूप से कर्म से डिटैच हो गए। बाबा को भी ये देखा, ब्रह्मा बाबा को, सारे कर्म करते थे लेकिन डिटैच हो गए। बाबा जा रहे हैं, देख रहे हैं, अगर पत्र लिखा करते थे उस समय, तब तो ईमेल और ये सब कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे उसमें भी ढेरों पत्र लिखते थे। और 18 जनवरी को भी हमने देखा, बाबा ने यशु दादी, एक दादी जी यशु दादी थे, तो वो बाबा के पीए की तरह होते थे, तो बाबा ने बोला, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखवाने हो वो लिखवा लो। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे को ये ना रहे कि अरे हमने बाबा को पत्र लिखा, बाबा का पत्र का उत्तर ही नहीं आया। बाबा को आभास हो गया था, कर्मातीत अवस्था में जब आत्मा पहुंच जाती है, मन के भावों को परख लेती है दूसरे के, तो उसे आभास हो जाता है कि बस अब मैं कितना समय यहाँ धरती पर हूँ, कितना पार्ट बजाना है और अब मुझे कब जाना है। मुझे याद आता है एक बहन गांधीनगर में, कैलाश बहन थे, हैं अभी भी सेंटर के इंचार्ज, तो दिसंबर 1968 में वो आए थे यहाँ, आए एक बार और बस बाबा से कहे, बाबा मुझे आपसे मिलना है, अभी मिलना है, कई बार मिले थे। तो बाबा ने कहा हाँ ठीक है बच्ची, फलाने टाइम पर आओ मिलो। वो गए और वहां जाके रोने लगे, थोड़ा आंखों में उनके आंसू आ गए। क्यों बच्ची, क्यों रो रही हो तुम, क्या बात है? बाबा बस बता नहीं पाए, फिर बड़े हिम्मत करके बताया कि बाबा मुझे कई दिनों से ये सपना जैसे आ रहा है, अब मैं बैठती हूँ योग में, वही दृश्य दिखाई दे रहा है कि बस आप जैसे लेटे हुए हो, आपके ऊपर सफेद चादर पड़ी हुई है, और बस मुझे सब लोग बड़े शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और आप बिल्कुल आराम से जैसे सो रहे हो। तो अच्छा बच्ची, और क्या देखा? तो नहीं बाबा, ये देखा, मुझे तब से मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, बाबा आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे? और वो बहुत, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची, देखो ये तुम्हारे मन का कोई संकल्प होगा और ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम ये बात किसी को भी बताना नहीं, तुम ये बात किसी से भी बोलना नहीं, बताना नहीं, डिस्कस नहीं करना। तो बाबा को शिव बाबा ने भी जैसे दे दिया था, और बाबा संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ में, वो तो सुना ही होगा, समय प्रति समय संदेश ही उनको बाबा भेजता था और पूछता था ऊपर वतन में जो संपूर्ण ब्रह्म है कैसी है उनकी मूर्त, तो बस संदेशियां बताती थी कि बस बाबा बिल्कुल आप जैसा है, सिर्फ तेज उनमें जरा ज्यादा है, बाकी सब आपके जैसे। तो अब बाबा को बस ये लग गया, मुझे संपूर्ण बनना है, संपूर्ण होने का समय आ गया है, लेकिन लौकिक रीति से समझे जाते हैं वो 14 जनवरी तक दिन अच्छे नहीं होते हैं। तो बाबा को भी ना, जैसे ये था भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, ऐसे ही बाबा को भी ना, बस धीरे 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 ऐसा पुरुषार्थ हो गया, अब वो स्थिति प्राप्त कर ली जो मैंने आपको बताया। देखते ही बाबा अंदर दिल की बात कहते था कर्मातीत अवस्था, ऐसे ही बाबा ने 17-18 जनवरी आई, वो तो इशू बैन से सारे पत्रों के उत्तर लिखवा दिए। नक्की लेक का म्यूजियम लेना था बिल्डिंग, वो बाबा ने क्लियर कर दी। और आखिरी दिन बाबा ने ना सबको इंस्ट्रक्शन दी, आज बाबा क्लास रात्रि क्लास जल्दी कराएगा, रोज 9:15 होती है 9 बजे, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे कराएगा, सब भोजन करके आना, ये इंस्ट्रक्शन थी हरेक को, क्योंकि बाबा को तो आभास हो रहा था बस अब बाबा मुझे बुला रहा है, मेरा अंतिम समय आ गया। भीष्म पितामह को जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान, ऐसे ब्रह्मा बाबा को भी अपनी स्थिति का पूरा जैसे भान होने लगा। और उसके बाद बाबा ने आए, मुरली चलाई, और उस अंतिम मुरली में बाबा को ना एक भी बार खांसी आई, ना कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, और बस बाबा ने ऐसी मुरली चलाई पावरफुल शक्तिशाली। और उसके बाद बाबा क्लास में, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, पहली बार बाबा ने बोला बच्चों से बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कहते हुए बाबा सबको टाटा करते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। उस समय हम एक दिन पहले ही बाबा ने मुरली में बोला था, जब बच्चे यहाँ आते हैं तो छत पर चले जाएं, बस बाबा को याद करें, बेहद का घर है ये, बेहद के घर में खुली छत पे आराम से टहलते हुए बाबा को याद करें। तो बस बाबा की मुरली के बाद हम ऊपर टहल रहे थे हिस्ट्री हॉल की छत पर, तो हमने देखा एक भाई बड़ी तेजी से, जमुना प्रसाद भाई, साइकिल लेकर निकले। मैंने ऊपर से ही पूछा, रे अभी आप रात को 9:30 बजे कहाँ जा रहे हो इतना? तो बस बाबा की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दादी ने मुझे कहा जरा डॉक्टर को बुला के लाओ, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। वो उधर गए डॉक्टर को बुलाने, हम भी नीचे से ऊपर से उतर के आए, और बाबा का जो कमरा है पांडव भवन में, उसमें पहले इतना बड़ा कमरा नहीं था, जितना जहाँ तक बाबा का पलंग पड़ा है उतना ही बड़ा छोटा सा ही कमरा था बाबा का, और पीछे से एंट्री थी, सामने से एंट्री भी नहीं थी। तो उधर से गए, तब हमने देखा बड़ी दादी, यहाँ प्रकाशमणि दादी जी खड़े हुए हैं, और बाबा जैसे चारपाई पर बैठे हुए हैं, और दादी के हाथ में हाथ, तो बाबा तो हमें पूरा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दादी की पीठ पूरी दिखाई दी, और बिल्कुल जैसे बाबा अपनी विल कर रहे हैं, बस नैन मुलाकात करते दादी जी से, दादी के हाथ में हाथ, और बाबा ने जैसे छुट्टी ली। तो ये अंतिम समय का दृश्य है, कर्मातीत स्थिति का, जैसे बाबा को आभास हो गया था और बाबा गए। लेकिन ब्यूटी की बात ये है कि बाबा का शरीर 18 जनवरी को छोड़ा, 18 जनवरी की रात भर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, 21 दोपहर के बाद। लेकिन बस बाबा का चेहरा वैसा ही चमकता हुआ, न कोई इंजेक्शन लगाया गया था बाबा को, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, कुछ नहीं, वही चमकता हुआ, न शरीर काला पड़ा, न कोई दुर्गंध आई। ये है प्रकृति जीत का लक्षण, 5 तत्वों को भी बाबा ने इतना प्रकृति को वश करके जीत लिया था कि इतना ना 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन वैसा ही चमकता मुस्कराता हुआ, गोरा रंग गोरा, कुछ काला नहीं पड़ा। तो बाबा अब चाहता है हम बच्चे भी जीवन के ये बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते रहें, और जैसे और बैलेंस है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, पर रमणीकता भी रहे और गंभीर भी रहे, जिससे दोनों स्थितियां हो कि बिल्कुल जब आवश्यकता हो विचार सागर मंथन जो बाबा कहता है ना, आज भी मुरली में बोला, उसके लिए एकांत चले जाओ। इसीलिए बाबा आजकल मुरलियों में एकाग्रता पर बहुत बल दे रहा है, बुद्धि को एकाग्र करना सीखो। और एकाग्रता का मतलब जैसे सूरज के सामने लेंस रख दो तो किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, और नीचे कुछ कागज या कपड़ा रखो जल जाता है ना, ऐसे बुद्धि जब बिल्कुल एकाग्र होने लगेगी तब विकर्म भस्म होने का भी जैसे हम प्रैक्टिकल और अनुभव तेज तेज और तेज करते जाएंगे विकर्ण। इसीलिए बाबा कहता है ज्वालामुखी भट्टी। अब इस भट्टी की आवश्यकता है ज्वाला के समान, जैसे हमारा चेहरा हो जाए ज्वालामुखी, एक स्थान है देवी का मुख में से हमेशा जहाँ ज्वाला निकलती रहती है, तो कोई मुख से स्थूल ज्वाला की बात नहीं, लेकिन चेहरा हमारा ऐसा ज्वाला समान हो जाए और सब संपूर्णता को हम पाते रहे, वो तब होगा जब वर्तमान समय हम एक और बैलेंस आवाज और आवाज से परे ये बैलेंस रखना सीख जाएंगे। जब चाहें आवाज में आए, नहीं तो स्थिति ऐसी हो कि आवाज से परे का ही अनुभव रहे, मैं आत्मा हूँ इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ आवाज से परी हूँ, और वो स्थिति का जितना जितना अनुभव करते रहे। वो कब होगा? क्योंकि अभी हमारा परिवार तो यही है ना, ब्राह्मण परिवार, तो दुनिया वाले मानो कोई गुस्सा करेंगे, कोई अमर्यादा युक्त कर्म करेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्राह्मण अगर कोई गुस्सा करेगा, अमर्यादा युक्त बात करेगा, कोई बात होगी तो हमें एकदम शॉक जैसा लग जा रहे, ये इतने 20 साल पुराने 25 साल पुरानी बहन, अभी तक भी इनमें ये क्रोध है, ये अहंकार है, ये बोलचाल जैसे नहीं है, ऐसी स्थिति कभी नहीं कहीं भी। दादी जी ने एक बार बताया था, हमें याद है, कहीं पर भी ना अगर संबंधों में कटुता आती है, क्योंकि हमारा परिवार ही यह है, सतयुग में भी यही परिवार लेकिन अलग अलग नाम रूप से होगा, तो परिवार के साथ कभी भी कोई बात कटुता होती है संबंध में, इतने मधुर संबंध किसी के साथ अगर नहीं है, अपने को झांक के देखो, तो मुख्य दो बातें उसका कारण होती है। एक बात है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, किसी ने हमें किसी के प्रति कहा, देखो फलाना भाई या फलानी बहन आपके लिए ऐसा बोल रहा था, तो हमारे मन में जैसे कि वो विष का बीज बो दिया किसी ने, तो जब भी उस बहन भाई को देखेंगे तो हमारे मन में वही बात आ जाएगी गलतफहमी, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यानी बोलचाल बंद, बोलचाल में कोई भी बात नहीं रहती, वो सामने से आएगा भी कोई, हम इधर से रास्ता काट के निकल जाते हैं, वो उधर से रास्ता काट के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि सतयुग में यही तो परिवार होगा हमारा, बहुत मीठा परिवार, इसीलिए बाबा ने कहा 3 सर्टिफिकेट जो लेने हैं ना, प्रभु पसंद, मन पसंद और परिवार पसंद। परिवार से भी हमें एक एक से जब ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ ये आत्मा वास्तव में, भले कोई भी बोलेगा ज्ञान में नहीं भी, भाई चाहे हम ज्ञान में नहीं चलते, लेकिन इनको हम सर्टिफिकेट देते हैं कि ये जो आत्मा है ना बहुत अच्छे हैं, कभी क्रोध नहीं करते, कभी अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं, निगेटिविटी नहीं, और हम इनको पूरा सर्टिफिकेट देते हैं। जब संसार से, क्योंकि प्रभु से भी सर्टिफिकेट लेने, मन से भी सर्टिफिकेट लेने, लेकिन परिवार से सर्टिफिकेट लेना, ये है अंत समय की। क्यों? क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ उसके लिए हो रहा है, अंतमति सोगति के लिए, अंत में उस क्षण के लिए जब हमारे प्राण इस तन से निकले, उस समय हमें कोई भी देहधारी व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी याद ना आए। अंत में जब ऐसी मति होगी तब ही हमारी सदगति होगी। तो इसीलिए ये मति, ये तो बाबा का तो देखा, लेकिन मम्मा की अंत में एक बात सुना के मैं खत्म करता हूँ। मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा, तो 65 में मम्मा का तबीयत तो आप सबने सुना है, बहुत खराब थी। अंतिम दिन भी मम्मा ने अंगूर की टोली सबको दी, और फिर सबसे छुट्टी लेके जैसे शरीर छोड़ के मम्मा वतन में पहुंची। जब मम्मा वतन में पहुंची तो वतन में अव्यक्त बाप दादा थे, साकार बाबा तो यही थे, तो अव्यक्त बाप दादा ने वहां पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मामा सदा की भांति पहले तो शांत रही, फिर मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करा। अच्छा बच्ची, अच्छा नहीं करा, जाओ अभी नीचे जाओ, तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी योग कर रहा है, सारे ब्राह्मण वत्स भी योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, इसीलिए जाओ और उस शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। बाबा ने ऊपर से भेजा नीचे, मामा नीचे आई, थोड़ा समय नीचे रही और उसके बाद फिर मामा जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव करके आई? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो अब की बार भी अनुभव नहीं करा। क्यों बच्ची, तुम्हें उसके लिए तो भेजा ही था कि बाबा मैं जब नीचे गई तो मैंने शरीर में प्रवेश की कोशिश करी, लेकिन शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, उसमें कोई भी चुरपुर नहीं हुई, लाइफ नहीं आई, और मैं तो बिना प्रवेश किए हुए कर्मातीत स्थिति का अनुभव कैसे करती, मैंने तो नहीं करा मामा। तो बाबा ने कहा, हम सबके लिए वो बाबा की जैसे डायरेक्शन है कि बच्ची जब तक उस स्थिति का अनुभव नहीं किया है जिस स्थिति में तुम परम धाम से अपना स्थान छोड़ के आई थी, वो ही स्टेज पर जब यहाँ पर बच्चे आएंगे वो स्टेज अनुभव करेंगे कर्मातीत स्थिति का, तब आत्माएं परम धाम जा सकेंगे, तब तक यहीं पर ही पार्ट बजाना पड़ेगा। इसीलिए अभी कर्मातीत स्थिति का तुमने अनुभव नहीं किया तो अभी ऊपर नहीं जा सकते, अभी जाके पार्ट बजाओ। और हम सब जानते ही हैं किसी न किसी नाम रूप में मामा पार्ट बजा रही है, तो हम सबको भी उसी स्थिति को प्राप्त करना है जिस स्थिति में हम परम धाम से आए थे, चाहे सतयुग में आए चाहे त्रेता, कोई कभी भी आया, पहला जन्म तो उसका बेस्ट है ही है। तो इसीलिए बाबा ने ये शिक्षा दी। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे जो भी कार्य हों, लौकिक अलौकिक, सब बैलेंस से हो, लौकिकता और अलौकिकता का बैलेंस भी हो। और जब ऐसी स्थिति होगी अंत में, वो तभी होगी जब हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। उस स्थिति को प्राप्त करके फिर हम अपने जाएंगे। हाँ, कभी परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, घबराहट होती है, हम चाहते हैं कोई कार्य न करना, लेकिन फिर भी वो कार्य हमारी कर्मेंद्रियों से हो जाता है। पुराना हिसाब किताब आत्मा के ऊपर बहुत बहुत चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा, एक शक्ति अभी बच्चों को इस समय के अनुसार धारण करनी है। कौन सी? एक तो निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ऐसी पावरफुल हो, इतनी शक्तिशाली हो जो आगे आने वाली परिस्थिति का हमें तुरंत अनुभव हो जाए। बाबा तो टच करता है, बाबा ने बताया था, एक बाबा के पास हर बच्चे का टीवी सेट है, टीवी सेट होता है ना, हर बच्चे का टीवी सेट है। और जब कोई बच्चा किसी कमजोरी से पास होता है, कोई विकार के वशीभूत है, कोई ऐसी विघ्न के वशीभूत है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है। फिर बाबा का ध्यान उस टीवी की तरफ जाता है, बाबा देखता, अच्छा फलाना बच्चा अभी उसके इस विकार के वशीभूत है, इस कमजोरी के वश में है, फिर बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है, जिससे वो बच्चा उस कमजोरी से बाहर निकले। लेकिन उसकी सफलता अब बच्चे की क्लीन और क्लियर बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि जब तक पूरी क्लीन और क्लियर नहीं होगी कि बाबा जो हमें टच करा रहा है उसको मैं धारण कर लू, जैसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी जब तक, तो टीवी या रेडियो सेट या वो ठीक से पकड़ेगा नहीं। ऐसे ही बाबा तो चाहता है हमें शक्ति देना, लेकिन अगर मेरा रिसीवर सेट परफेक्ट नहीं हुआ तो मैं उस बात को पकड़ नहीं सकूंगा, और संभव है किसी कमजोरी के वशीभूत हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा है अभी माया जो है ना अपने क्रूट फॉर्म में नहीं आएगी कि क्रोध अहंकार ईर्ष्या लोभ, नहीं, बहुत मधुर रूप में आएगी, मीठे रूप में। आप पहचान नहीं सकोगे कि ये दैवी गुण है या माया का स्वरूप है। इसीलिए उसको पहचानने के लिए एकाग्रता की शक्ति की बहुत जरूरत है, और वो तब होगा जब बच्चे अब रहम दिल का गुण धारण करोगे। ये अंतिम गुण है रहम दिल, और जब रहम दिल हम हो जाएंगे तो हम किसी को भी क्षमा कर सकेंगे, किसी की कोई भी बात देखेंगे उस पर हमें क्रोध नहीं आएगा, तरस नहीं आएगा। ऐसा हमारा हृदय हो हम हरेक को क्षमा कर सके। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा वो क्षमा नहीं कर सकेगा, जो शक्तिवान होगा वो ही क्षमा कर सकता है। इसीलिए बाबा की इस शिक्षा के साथ हम लोग उठें कि मुझे किसी और को देखना ही नहीं है, किसी का व्यवहार चाहे कैसा भी हो, लेकिन मुझे अपने दिल से हरेक को क्षमा करते चलना है। जितना क्षमा करते चलेंगे उतने हम महान बनते जाएंगे, और अंत में सबकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी, क्योंकि जो रहम दिल होगा वो ही दाता बन सकेगा। दाता माने देवता, देने वाला। हमारा हाथ सदा यूं ही देने वाला रहे देवता की तरह। हर आत्मा को हम बस रहम दिल होके क्षमा करते चले, और क्षमा करते करते संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होते होते बाबा के साथ हम सब मिल करके बस परम धाम चलेंगे, और उसके बाद सतयुग में आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। No।